ओम शांति। हमें जो होमवर्क मिला था 19/12/84 की अव्यक्तवाणी से टीचर के साथ मुलाकात, उसमें सेकंड ग्रुप के साथ बाबा ने मुलाकात की। वो तो टीचर्स को बाबा ने यानी रूहानी गुलाब कहा है, क्योंकि उसमें तो ज़्यादा उतना मटेरियल नहीं था, और जो भी हमारे मनन चिंतन से जो भी निकाला उस पर हम चर्चा करेंगे। तो रूहानी गुलाब है टीचर्स, और बाबा ने एक अव्यक्तवाणी में कहा है कि टीचर्स यानी क्या, गुरु भाई, यानी गुरु भाई अर्थात बाप समान स्थिति। यानी देखो बाबा भी टीचर्स को कितनी ऊंचे नज़र से देखते हैं, क्योंकि वो क्या है, विश्व कल्याण के निमित्त है, क्योंकि इस विश्व के आधार मुहूर्त उद्धार मुहूर्त है, इसलिए बाबा टीचर की इतनी महिमा करते हैं। तो टीचर है ही है, क्योंकि उनकी विशेषता है, लेकिन हम सभी कौन है, हम सभी टीचर्स हैं, क्योंकि अपने ब्रह्मा कुमारी जी में हर एक व्यक्ति समझा बाबा का बच्चा, यानी स्टेज के स्पीच से लेकर यानी झाड़ू पोछे की सेवा करने तक सभी कौन है, टीचर्स है, क्योंकि सभी बाबा का ज्ञान देते हैं, इसलिए वो टीचर्स का, हम सभी टीचर्स है। तो उसके और बाबा ने आगे कहा है कि गुलाब पुष्प का भी एग्जाम्पल दिया है कि गुलाब पुष्प में बहुत कुछ विशेषता रहती है, श्रेष्ठता है, क्योंकि उसमें कुछ विशेषता, इसलिए भगवान भी उसका नाम लेते हैं। तो हमें भी गुलाब पुष्प में क्या विशेषता है, तो बहुत सारी विशेषता है, लेकिन उसमें से अपन मैं 5 विशेषता निकाली है अपने मनन चिंतन से। तो वो विशेषता अपने जीवन में कैसे धारण कर सकते, इस पर हम थोड़ी चर्चा करें। जैसे भाई साहब ने एक बार क्लास किया था, उसमें जो दत्तात्रेय है उसने कितने गुरु किए थे, 24 गुरु। तो उसने हर एक से कुछ न कुछ सीखा, तो अपन भी गुलाब पुष्प से क्या सीख सकते, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो उसका पहला विशेषता है, बहुत सारी विशेषता है, लेकिन अब पहले वो सबको खुशबू देता है, क्योंकि उनके संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं हैं उनको क्या करते, खुशबू से भरपूर कर देता है। तो खुशबू से क्या मिलती है, खुशी मिलती है। तो हमें भी क्या करना है, उसे क्या सीखना है, हाँ, तो खुशबू देना, अपने जीवन में दिव्य गुणों की धारणा करके सभी को सुख देना है, खुशबू देना है, तो खुशी मिलेंगी ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे बोल मीठे होने चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं कि आपके मुख में सदैव मीठे बोल निकलने चाहिए, कड़वे नहीं, क्योंकि एक मीठे बोल से क्या होता है, बिगड़ा हुआ व्यक्ति सुधर जाता है, और कड़वे बोल से क्या होता है, सुधरा हुआ व्यक्ति बिगड़ जाता है। तो इसलिए हमारे मुख से सदैव मीठे बोल निकलने चाहिए। तो जैसे महाभारत में दिखाती है कि द्रौपदी के मुख से निकले हुए 2 कड़वे बोल क्या हो गया, उससे इतना बड़ा महाभारत हो गया, और लास्ट में क्या हो गया, विनाश हो गया। और लास्ट में क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, सबका विनाश हो गया, हाथ में कुछ लगा नहीं। तो इस प्रकार बाबा ही बोलते कि बोलते जैसा कमान से निकला हुआ बाण और मुख से निकले हुए शब्द अपन वापिस नहीं ले सकते, इसलिए बोलते समय पहले क्या करना है, तो लो फिर बोलो। तो इस प्रकार हमें बोल द्वारे सभी को सुख देना है। तो यह है उसकी विशेषता गुलाब पुष्प की। दूसरी विशेषता है कि वो भेदभाव नहीं करता किसके साथ, जैसे गुलाब उसके से आगे समझो कोई बुरा भी व्यक्ति जाए, पतित भी मनुष्य जाए, तो उसको भी खुशबू देता है वो, और जो अच्छा भी व्यक्ति जाए उसको भी खुशबू देता है, यानी समानता रहती है, वो किसमें भेदभाव नहीं करता देने में। वैसा हमें भी क्या सीख मिलती है उससे, हमें भी सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। कैसा भी व्यक्ति यानी हमारे सामने है, लेकिन हमारे उसके प्रति क्या रहे, शुभ भावना रहे, अच्छे बोल रहे। जैसे ब्रह्मा बाबा के बारे में बताती है कि ब्रह्मा बाबा भी जब ज्ञान में आने के पहले, बाबा की प्रवेशता होने के पहले उसका जीवन कैसा था, रॉयल था, यानी उस परिवार के लोग जो समाज के लोग थे उसको बहुत रिगार्ड देते थे। और जब ज्ञान में आने के बाद जब बाबा ने उसमें प्रवेशता की, तो तब क्या हो गया, उसने जब प्यूरिटी की बात आ गई तब लोगों ने बहुत विरोध किया, लोग जो उसके संबंधी थे उसके विरोधी बन गए और गाली देने लगी, लेकिन बाबा ने उसकी प्रति क्या किया, शुभ भावना रखी कि एक न एक दिन इसका कल्याण हो जाएंगे, उसको कुछ ये नहीं कहता। उसका परिवर्तन क्या हुआ, एक दिन जो उसके यानी शत्रु थे वो भी मित्र बन गए, यानी बाबा के ज्ञान में जो संबंधी थे वो पहले बहुत विरोध करते थे, लेकिन बाद में उसके अंदर परिवर्तन हो गया और वो क्या हो गए, ज्ञान में आ गए और यज्ञ में भी तन मन धन से अच्छी सेवा की उन्होंने। तो इस प्रकार हमें भी सबके प्रति शुभ भावना रखनी, कोई कैसा भी हमारे साथ व्यवहार करे लेकिन हमारे उसके प्रति क्या रहे, अच्छी भाव रहे, उसका भी कल्याण हो जाए, कल्याण की भावना रहे। अभी तीसरा विशेषता है उसकी कि गुलाब पुष्प क्या करता है, यानी किसी को अपने तरफ आकर्षित नहीं करता है तो सभी उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। वैसे हमें भी क्या करना है, जैसे हम सेवा करते, यज्ञ सेवा, सेवा करते समय निस्वार्थ भाव से सेवा करो। सेवा में भी ये नहीं रखो कि मुझे यानी मान मिले, यानी कोई मान देवे कि मेरी महिमा करे या स्टेज पर मेरे को बुलाए, तो इस प्रकार की भावना न रखते हुए गुप्त सेवा करें। जो भी हम गुप्त सेवा करते उसका कई गुना भाग्य हमारा बन जाता है। और यदि हमने स्वार्थ भाव से करेंगे सेवा, कुछ मिले तो उस सेवा में सफलता तो मिलते है क्योंकि भगवान का कार्य बाबा मदद करते हैं, लेकिन जो भी सेवा करते उनको आंतरिक खुशी नहीं मिलती है। इसलिए जो भी हम सेवा करते हैं तो निस्वार्थ भाव से सेवा करो। अभी चौथा गुण है, और कौन से गुण है उसमें, हाँ कांटों के बीच में, अभी हाँ वो कांटों के बीच में रहते हुए भी कांटे का उस पर वो कांटा नहीं बनता, हाँ अपनी सेफ्टी के लिए, या वो वैसे संग दोष का असर उस पर नहीं पड़ता। वैसे हमें भी, हम भी अगर चारों तरफ हम रहते हैं तो चारों तरफ कैसा पतित वातावरण है, तो ऐसे वातावरण में रहते भी उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए बाबा ने भी कहा है टीचर्स को कि जैसे बाबा न्यारे और सबसे प्यारे रहते हैं, वैसे हमें भी क्या करना है, सबसे न्यारे रहना है, तब बाप के प्यारे बन सकेंगे हम। तो उसके लिए बाबा ने भी बोला है कि जो हम न्यारे बन के करेंगे तो हम अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं। और लास्ट एक पांचवा निकाला है हमने कि गुलाब पुष्प क्या होता है, उसको माला में पिरो करके देवताओं के गले में उसको डालते हैं, यानी इसका इतना ऊंचा स्थान मिलता है उनको। तो वैसा हमें भी क्या करना है, बाप के गले का हार बनना है, तो उसके गले का हार बने तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यानी जो बाप की श्रीमत है उस अनुसार चलना पड़ेगा। और बाप का गले का हार अर्थात बाप समान स्थिति, जैसे बाबा का संकल्प है वही संकल्प हमारा हो, जो बाप के बोल है वैसे भी हमारे हो, जो बाबा के कर्म है वैसे ही हमारे कर्म हो। तो इसलिए बाबा ने बोला कि तुम रूहानियत में रहो, तो रूहानियत की तीन बातें बोली बाबा ने कि सदा रूहानियत में रहना है, रूहानी नशे में रहना है और रूहानी सेवा करनी है। तो अभी समय अनुसार क्या है, रूहानियत की आवश्यकता है। यदि हम रूहानियत में नहीं रहेंगे तो क्या होता है, झगड़े का कारण यही, हम रूहानियत में नहीं रहते, शारीरिक भान भी आती है इसलिए झगड़े होती है। इसलिए बाबा बोलते हैं रूहानियत में रहो और रूहानी खुशबू फैलाओ, ये ब्राह्मण जीवन के क्या ऑक्यूपेशन है। और इस ऑक्यूपेशन में हम बिजी रहेंगे तो बाबा के गले का हार बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं है, मॉर्निंग में उठी तो मुझे सचिन भाई का याद आया, मुझे आज कुछ दिया भी है होमवर्क, बट स्टिल आई ट्राई। टॉपिक है टीचर्स के साथ बाबा ने बात की है, और अभी हमने सुना बाप समान के बारे में, तो बाबा ने ऑलरेडी कहा है कि टीचर्स अर्थात बाप समान। तो फर्स्ट स्टैंजा में बाबा ने शुरू किया है कि बाप समान निमित्त सेवाधारी। अभी हम देख रहे हैं कि निमित्त सेवाधारी मीन्स इंस्ट्रूमेंट, कि बाबा कहते हैं टीचर्स हैं वो इंस्ट्रूमेंट हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं चलेगा तो जो भी इसे यूज़ करेगा क्लैरिटी नहीं आएगी। तो बाबा ने कहा कि अगर टीचर्स जो अपने आप को इंस्ट्रूमेंट नहीं समझेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, और अगर इंस्ट्रूमेंट खुद को नहीं समझेंगे तो पहली चीज़ क्या है कि बाकी जो और ज्ञान सुनने वाले होंगे वो उनमें फंसेंगे, दूसरों को इंस्ट्रूमेंट नहीं समझेंगे तो हम दूसरों में फंस जाएंगे, एज कम्पेयर टू टीचर्स की अगर हम बात करें तो। तो बाबा ने कहा कि निमित्त समझने से स्वतः ही बाप समान बनने का संस्कार प्रैक्टिकल में आता है। जैसे कि बाबा आते हैं परमधाम से, हमें ज्ञान सुनाते हैं, तो बाबा समझता है कि मैं टीचर हूँ, इस समय मुझे बच्चों के कल्याण अर्थ आना है, तो बाबा आता है और सेकेंड में फिर डिटैच हो जाता है। तो बाबा ने तीन चार लाइनों में बोला है कि इंस्ट्रूमेंट समझेंगे तो न्यारापन आएगा, न्यारापन के साथ साथ फिर प्यारापन आएगा। एक्चुअली क्या होता है कि हम न्यारे तो बनने की कोशिश करते हैं लेकिन न्यारे के बजाय प्यारे ज्यादा बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि अति न्यारे के साथ साथ अति प्यारे बनना है, प्यारे पहले नहीं बनना है, पहले न्यारे बनना है, कि डिटैच, पहले डिटैचमेंट होनी चाहिए, देन फिर हमें लविंग बनना है। बाबा ने कहा कि अगर इस विशेषता को सदा स्मृति में रखते हैं तो सहज आगे बढ़ते जाएंगे। जहाँ बाबा ने कहा कि जहाँ निमित्त है वहाँ सफलता है, अगर निमित्त भाव नहीं होगा तो कुछ भी हम करेंगे वहाँ हमें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर हम वहाँ रुक जाएंगे। जैसे कि मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैंने कहीं सुना, बाबा ने कहा कि अगर निमित्त भाव नहीं रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, हद, एक लिमिटेशंस आ जाती है, एक मेरापन आ जाता है। कुछ दिनों के पहले की बात है, टीचर ने इंट्रोडक्शन कराया किसी मधुबन निवासी से कि ये मेरे सेंटर के जिज्ञासु हैं। फिर जिज्ञासु बोलते हैं ये मेरी दीदी हैं। अभी क्वेश्चन आ गया, बाबा कहाँ हैं? सो जब निमित्त भाव नहीं होता है तभी अटैचमेंट, लगाव, झुकाव, प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं। निमित्त भाव नहीं होने से ही मेरापन क्रिएट होता है। तो बाबा ने जो फर्स्ट चीज़ बोली इंस्ट्रूमेंट, एंड पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है ये इंस्ट्रूमेंट वर्ड ही, जब निमित्त भाव होगा तभी वहाँ पे सफलता सहज होगी, मेरापन नहीं होगा, न्यारे और प्यारे तभी हम बन सकेंगे। तो बाबा ने इवन कहा भी कि मेरा सेंटर नहीं बाबा का सेंटर, मेरी सेवा नहीं बाबा की सेवा, मेरे स्टूडेंट नहीं बाबा के स्टूडेंट। मतलब जब तक क्योंकि हम बाबा को देखकर बने हैं, किसी स्टूडेंट किसी सेवा को देखकर नहीं बने, तो जो भी चीज़ है वो बाबा की है। हमें हमेशा क्वेश्चन करते रहना है कि मैं किसके लिए हूँ निमित्त और किसने बनाया है। बाबा ने निमित्त बनाया है और बाबा के बच्चों के लिए बनाया है। बाबा ने कहा नेक्स्ट कि मेरा खत्म होकर तेरा बन जाता है, तेरा कहना अर्थात उर्ति कला में। कोई भी चीज़ लौकिक दुनिया में भी देखें, अगर हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी को भी देते हैं तो वो पर्सन एक रेस्पॉन्सिबल हो जाता है, फिर हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। घर में भी होता है, कोई भी चीज़ पेरेंट्स को ला के हम देते रहते हैं तो पेरेंट्स भी खुश रहते हैं, अच्छा मेरा बच्चा मेरे ऊपर डिपेंड है, तो फिर बच्चे को क्या होता है, फ्री रहता है। ऐसे यहाँ पर भी जो भी चीज़ें हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी की, जो भी चीज़ें अगर हम बाबा को सरेंडर कर जाते हैं तो हमारी उड़ती कला हो जाती है। बाबा ने कहा नेक्स्ट कि एग्जाम्पल बनते हैं, बाबा ने कहा जैसे आप उड़ती कला के एग्जाम्पल बनते हो वैसे ही दूसरे बनते हो, ना चाहते हुए भी दूसरों के अंदर वाइब्रेशन का इफेक्ट पड़ता है। कहते हैं ना, जितना अच्छे टीचर उतने अच्छे उसके जो स्टूडेंट्स होंगे। तो जो भी हमसे निमित्त बनते हैं, टीचर्स का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है कि जैसे टीचर होती है वैसे वहाँ के सेंटर के भाई बहन, उन पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, अभी एक ये सेंटर के टीचर्स की बात हो रही है, बट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हमें खुद का टीचर खुद के लिए बनना है। क्योंकि जब हम खुद के लिए टीचर बनेंगे तब भी हम खुद को टीच करके उस बाबा जैसा चाहता है वैसे आगे बढ़ा सकेंगे। एंड एक और स्लोगन था निश्चय बुद्धि विजय। निश्चय पर्सनली भी देखें या प्रोफेशनली भी देखें कि जहाँ निश्चय नहीं होगी वो चीज़ में हम विक्ट्री नहीं, सक्सेस नहीं मिलता, चाहे रिलेशनशिप की बात करें या घर में बात करें या परिवार में या फिर हम ज्ञान में भी चलते हैं। अगर बाबा पे निश्चय नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो घर में भी, सेवाओं में भी, जिनके साथ रहते हैं, अगर वहाँ निश्चय नहीं है तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। ओम शांति। मुझे निश्चय कैसे हुआ, मैंने बाबा का बहुत सारा पेपर लिया। अभी आप ये पूछना चाहते हैं मैं ज्ञान में कैसे आई या वो एक्चुअली मुझे बहुत विजन्स भी आते थे स्टार्टिंग में, एंड मैं बाबा को बोलती थी अच्छा ठीक है ये कर दोगे तो मैं मानूंगी भगवान हूँ, एंड वॉट एवर आई वॉज सेइंग, तो बाबा वो बहुत फुलफिल करता था। लाइक तो ऐसे धीरे धीरे निश्चय, बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ फुलफिल किया, इवन मधुबन से आने तक की सारी चीज़ें, मतलब बोलती थी अच्छा ऐसा होना चाहिए, तो वो चीज़ें एकदम चेंज होती गई बहुत सारे। एक्चुअली जब मैं ज्ञान में, हाँ जब मुझे ज्ञान मिला तब मैं अनकॉन्शियस स्टेज में थी, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे ज्ञान लेने जा रही हूँ चाहे क्या लेने लगी, कुछ नहीं पता था। मुझे ऐसे इंट्यूशंस आए कि मुझे कहीं जाना है मॉर्निंग में सुबह उठते ही. सो मैं मेरी फ्रेंड के पास गई और मैंने बोला मुझे इंट्यूशन सारे मुझे कहीं जाना है. तो लाइक हमारा एक फेवरेट मंदिर था शिव मंदिर करके, तो उन्होंने बोला ठीक है तुम रुको हम फ्रेश होके आते हैं. बट मुझसे नहीं रहा गया, इट वॉज लाइक कोई मुझे अपनी तरफ पुल कर रहा है. रुक नहीं सकती थी बहुत ज़्यादा, लाइक कोई बहुत ज़्यादा ही था वो इंटेंसिटी थी. तो मेरा जो वहाँ बस स्टैंड था वहाँ पर मैं गई एंड सडनली एक ऑटो वाला आया, उसने मुझे बिठा के और 3-4 किलोमीटर दूर एक ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर था वहाँ ले गए, सेक्टर 22 नोएडा में. हाँ, और वहाँ ले जाकर सेंटर के आगे मुझे उतार दिया. एंड एट दैट टाइम ऑल्सो मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, किसने कौन लेके जा रहा है, कुछ नहीं. बस हाँ, कोई तो मुझे अपनी तरफ मतलब पुल कर रहा है, ऐसे था कहीं जाना नहीं. कुछ अनकॉन्शियस उस टाइम स्थिति, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं, स्टेज नहीं थी, बस ये था कहीं जाना है, कहाँ जाना है कुछ नहीं पता था. तो फिर वहां पर गई तो एक माता जी थी, मतलब वो कभी कोर्स नहीं कराती थी, तो सेंटर का देखभाल करती थी. वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे कोर्स के लिए, कोर्स की टीचर बहन आई नहीं थी. तो वो माता जी मुझे, मैंने बोला गई सामने और बाबा की फोटो देखे तो थोड़ा सा अच्छा लगा और बोले ऐसा लगा संकल्प कि सही जगह पहुंची हूँ. एंड वो माता जी मुझे लेकर गई कमरे में एंड उन्होंने बोला कि आत्मा आंखों से देखती है, मुंह से बोलती है, कर्मेंद्र द्वारा कर्म करती है. और फिर बोला उन्होंने हम जो बोलते हैं, जो बोलते हैं देखते हैं और जो सोचते हैं वो यहाँ रिकॉर्ड होता है. वो एक लाइन थी, ठीक है बोलते हैं देखते हैं रिकॉर्ड होता है ओके था, लेकिन जो सोचते हैं वो भी रिकॉर्ड होता है, वो मेरे लिए बहुत डिफरेंट पॉइंट था क्योंकि मैं बहुत लॉजिकल थी और मेरी थॉट्स बहुत ही स्पीडली चलते थे. उस टाइम मैं सीए कर रही थी तो मुझे बहुत लगता था कि अच्छा जो सोचते हैं वो भी रिकॉर्ड होता है. बस मेरा आत्मा का चैप्टर कंप्लीट हो गया. दीदी आ गई तो बहुत सारे लोग कोर्स करने स्टार्ट ही किया था तो उन्होंने परमात्मा से शुरू करा आत्मा कंप्लीट. उन्होंने बोला आत्मा का आपको बाद में कराएंगे और परमात्मा का शुरू किया. तो उन्होंने मुझे पूछा आपका नाम क्या है, तो मैंने बोला शिवानी. तो उन्होंने सडनली बोला अरे आप तो बाबा की राइट हैंड हो. बस मुझे अच्छा लगा, अच्छा मैं राइट हैंड हूँ तो मुझे आना ही है. ऐसे करके फिर बाबा से बहुत सारे क्वेश्चंस, अच्छा ऐसे है तो आप ऐसे करके दिखाओ, ऐसे है तो ऐसे करके दिखाओ. फिर एक मुरली में था, मैं डेली बाबा से बहुत कन्वर्सेशन बहुत करती थी, बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन करती थी. मैंने बाबा को एक दिन ऐसे बोला कि मैं मार्केट जा रही हूँ, आपके लिए कोई कपड़े लेने हैं तो आप बताओ क्या चाहिए. तो अगले दिन की मुरली में आया, मतलब शाम को मैं बोल रही थी तो मुरली में आया अगले दिन. शिव बाबा के तो कोई शरीर है नहीं, वो तो कपड़े पहनेगा नहीं, बाकी आपको कपड़े देना है तो ब्रह्मा को दोगे और ब्रह्मा में बुद्धि फंसाने की क्या जरूरत है. फिर आगे आया आपको रंग बिरंगी माया नहीं पहनना है, आपको तो बैच लगाना है एंड सफेद कपड़े पहने, ऐसे कुछ करके था. फिर उस दिन से मैंने बोला अरे रंग बिरंगी माया नहीं पहनना तो कैंसिल प्लान. देन मैंने बाबा को लेटर लिखा ऐसे करके, कपड़े लिए बट कभी कलरफुल नहीं लिए उसके बाद. ओम शांति.